चर्चा का विषय है।
ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है वोकल फॉर लोकल, अर्थव्यवस्था की मजबूती में स्थानीय उत्पादों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत द्विवेदी और आर्थिक विश्लेषक गोपाल कृष्ण अग्रवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
किसी देश की असली ताकत उसके हथियारों में नहीं, उसके हाथों में होती है, जो मिट्टी से कुछ नया बनाते हैं, जो मेहनत से सपनों को साकार करते हैं। भारत के ऐसे ही लाखों हाथों से आज फिर एक नई कहानी लिखी जा रही है। कहानी है वोकल फॉर लोकल की। कभी मिट्टी के कुल्हड़ से उठती भाप में, कभी हथकरघे पर चलती उंगलियों की खनक में, कभी किसी कुम्हार की मुस्कान में बसती है भारत की असली पहचान। आज वही पहचान फिर से बुला रही है। शायद वो कह रही है, अपनों का साथ दो, अपने देश का मान बढ़ाओ। क्योंकि वोकल फॉर लोकल सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक आंदोलन है। हर भारतीय के दिल से उठी वो आवाज जो कहती है, मुझे अपने देश पर भरोसा है।
गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। इस भाव को लेकर हमें आगे चलना है। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल।
वोकल फॉर लोकल से कैसे भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूती आ रही है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ गोपाल कृष्ण अग्रवाल और पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रजनीकांत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार
जी। नमस्कार।
सबसे पहले गोपाल जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। जब भी वोकल फॉर लोकल की बात होती है तो हमारे जहन में आता है कि गांव में जो हमारी लोक परंपराएं हैं, लोक संस्कृति हैं, जैसे दिया बनाने की, झालर बनाने की, उनकी हम चर्चा करते हैं। हमारे श्रोताओं के लिए कार्यक्रम के शुरुआत में अगर आप थोड़ा बता पाएं कि वोकल फॉर लोकल का विस्तृत दायरा क्या है।
अभी तक जो हमारे देश में एक भाव चल रहा था कि केवल भारत में हैंडीक्राफ्ट की बात करनी है, यहाँ का आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, डांस, फूड, फेस्टिवल, जो कल्चरल कंटेंट है, हैंडीक्राफ्ट्स है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो उद्योग है छोटे छोटे, उन्हीं के अंदर भारत की एक पहचान बनती थी, वही प्रोडक्ट के लिए जाने जाते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का आह्वान किया, वोकल फॉर लोकल इसके पहले का, और कोविड के बाद उन्होंने एक नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत, यानी भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति डोमेस्टिक करेगा, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, फिनटेक के माध्यम से हो, यानी चिप भी यही बनेंगे और शिप भी यही बनेंगे। ये उनका बड़ा प्रमुखता से एक स्टेटमेंट था अभी कुछ दिन पहले कि भारत केवल यही नहीं, चिप और शिप भी भारत में बनाएगा। तो अब जब वोकल फॉर लोकल की बात जब प्रधानमंत्री जी ने कही है, और जिसका एक नैरेटिव अब पूरे देश में हम दिवाली के समय देख रहे हैं, वह यह है कि यहाँ के प्रोडक्ट, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर के हों, एमएसएमई सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इन सब सेक्टर्स में भी भारत अपने आप आत्मनिर्भरता के माध्यम से देश में बनी हुई चीजें ही खरीदेंगे और देश में बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने का काम करेंगे। यह इसकी व्यापक डेफिनेशन है और केवल नैरेटिव या केवल बोलने की बात नहीं है, उसके लिए पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे काम किया गया है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे बढ़ावा मिले, खासकर एमएसएमई सेक्टर को। ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखें, विश्व में जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, चाहे आप चीन को देख लें या जर्मन, यूरोपियन कंट्रीज, इटली वगैरह की कंट्रीज की आप इंडस्ट्रीज को देखें, तो वहाँ एमएसएमई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उस कंट्रीब्यूशन को अंडरलाइन करते हुए यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, माइक्रो एंटरप्राइजेस को बहुत तरीके से सरकार बढ़ावा दे रही है, ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो प्रोग्रेस करे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन से अलाइन हो और वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे, उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था के लिए क्रिएट किया है।
जी बिल्कुल। एक आंकड़े पर नजर डालते हैं। अखिल भारतीय व्यापारिक संघ यानी CAIT ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार दिल्ली में दिवाली पर रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई है, लोगों ने जमकर भारतीय चीजों की खरीदारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 5.40 लाख करोड़ रुपए की चीजें बिकी हैं इस दिवाली पर, जिसमें 65,000 करोड़ रुपए का कारोबार सेवा क्षेत्र में हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं वोकल फॉर लोकल की जो हिस्सेदारी है वो बहुत ज्यादा है। डॉक्टर रजनीकांत, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं और पिछले कुछ समय से भारत में सरकार का फोकस इस दिशा में है, तो कितना परिवर्तन आप जमीनी स्तर पर देखते हैं वोकल फॉर लोकल से, चाहे महिलाओं के जीवन यापन में बदलाव आया हो या फिर गांव के कारीगरों को बड़ा मंच मिला हो या फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस में उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, बदलाव कितना आया है?
ये उत्सवों का पूरा सप्ताह चल रहा है और आने वाले समय में छठ पूजा का बड़ा त्योहार आने वाला है और जब हम छठ का जिक्र करते हैं तो हम बिहार की उस महत्वपूर्ण धरती पर जाते हैं जहाँ पे मधुबनी पेंटिंग है, मंजूषा है, नालंदा की बावन बूटी है, उद्वन नगर का खुरमा है या हाजीपुर का चिनिया केला है और उसके साथ में सिलाव का खाजा है और पटना की पेंटिंग है, पटना कलम जिसको बोलते हैं, गया का तिलकुट है, वहां की पत्थरकट्टी है या मुजफ्फरपुर की शाही लीची के साथ में ये जुड़ा हुआ है। ये इतनी बड़ी विरासत भारत की है जो सोने की चिड़िया के रूप में पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के पुनर्निर्माण के इस कालखंड में जब आत्मनिर्भर भारत लोकल से ग्लोबल की बात की और अभी उन्होंने स्वदेशी की बात भी किया, तो उसमें बड़ा स्पष्ट हमारा मानना है कि सारी चीजें जिस भूभाग में हो रही है, जहां के लोगों का खून और पसीना उसमें शामिल है, जिसमें महिला पुरुष आबाल वृद्ध बालक सभी शामिल हो रहे हैं उसके बनाने की विधा में, और जो हजारों साल की अपनी लिगेसी है, परंपरा है, जो संस्कृति वहां की उसके साथ जुड़ा हुआ है, यही आज की सबसे बड़ी चीज है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का नतीजा ये है कि इस बार की दिवाली तो बम्पर हो गई। हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दुनिया के कई देशों ने हमारे ऊपर में टैरिफ से लेकर के दुनिया भर के इस तरह के दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन आपदा में अवसर का प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है वह मंत्र स्वदेशी इसमें इतना काम आया कि सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए और दिवाली के त्योहार के सीजन में शानदार बिक्री हुई। और यही बिक्री जुड़ी हुई है मिट्टी के दिए को बनाने वाले कुम्हार से लेकर के और तेल निकालने वाले लोगों तक, बत्ती बनाने वाले लोगों तक, मोमबत्ती बनाने वाले लोगों तक, जितने भी कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ तक कि देसी झाल बनाने के लिए लाखों लाख यहाँ पे कुशल लोग इन्वॉल्व हुए और उसका नतीजा ये है कि भारत एक बार पुनः अपने को स्थापित करने जा रहा है कि हम पूरी दुनिया में अपने कुशल से, हुनर से, अपने मानव कौशल से, मानव श्रम से वो चीजें पूरी दुनिया को दे सकते हैं जो कहीं और दूर दूर तक नहीं है। आने वाले छठ के समय में हमें विश्वास है कि एकदम यही टेम्परामेंट चलेगा, वह चाहे छठ के समय में सूप का काम होगा, छठ के समय में करवा का काम होगा, छठ के समय में जितने पात्र बनेंगे वो सब 100% हस्तनिर्मित होंगे, स्वदेशी होंगे। जब हम बात करते हैं स्वदेशी की, लोकल टू ग्लोबल की, एक शब्द है जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक उपदर्शन, जो इस बात की गारंटी देता है कि प्रोडक्ट वहीं का बना हुआ है, भारत की बौद्धिक संपदा में शुमार है और वही लोकल है। जीआई इज लीगल लोकल, जीआई कानूनी रूप से लोकल है। तो प्रधानमंत्री जी के 2014 में सत्ता संभालने के बाद, भारत के प्रधान सेवक बनने के बाद जो सबसे बड़ा एक परिवर्तन हुआ कि जीआई की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ और आज की तारीख में उसी का नतीजा है कि जब स्वदेशी का आह्वान हुआ तो भारत में लगभग 650 से अधिक जीआई उत्पाद हैं जो 100% लीगल लोकल हैं, 100% स्वदेशी हैं और वहीं की मिट्टी की खुशबू से तैयार है। तो ये तैयारी सरकार की है, ये दूरदृष्टि उनकी है और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सम्मिलित है। एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका एक्सीलेंट एग्जाम्पल है कि हर जनपद के अंदर में एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जो जरूर से है जिसको सरकार ने आगे बढ़ाया, नहीं तो हमें याद है अच्छी तरह से कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब 2017 में एक जनपद एक उत्पाद की ODOP की बात की गई थी तो लोगों को लगा था कि कोई सामान्य सी योजना आ गई सामने। आज की तारीख में पूरे भारत के अंदर में एक जनपद एक उत्पाद ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत सरकार का और यही लोकल है और यही लोकल अब कानूनी जमा पहना करके जीआई टैग के साथ में ग्लोबल हो रहा है
जी,
तो
बिल्कुल
करोड़ों लोग सिर्फ रोजगार नहीं पा रहे हैं। तो हम अपने उत्पाद को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, ये आज की सबसे बड़ी विशेषता है
जी। आपसे समझना चाहेंगे गोपाल जी कि जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और हमारा ये लक्ष्य है कि 2030 तक हम जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वोकल फॉर लोकल से हमारे जीडीपी पर किस तरह का असर पड़ रहा है और क्या 2030 तक वोकल फॉर लोकल को और प्रभावी बनाकर हम अपनी अर्थव्यवस्था में और बेहतरी कर सकते हैं क्या?
जब प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल या स्वदेशी कहते हैं तो वो केवल लो एंड प्रोडक्ट के लिए नहीं बोलते। मैंने शुरू में भी कहा था कि हैंडीक्राफ्ट्स और इन चीज़ों में लो एंड प्रोडक्ट में हमारे देश की बहुत माहिर लोग हैं और उनकी हस्तकला वगैरह का ग्लोबल लेवल पे उसकी एक पहचान है, बट वो वैल्यू एडिशन उस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को उतनी तेज गति प्रदान नहीं कर सकते जिस बात की प्रधानमंत्री जी विकसित भारत इकोनॉमिक सुपर पावर की बात करते हो, जिसको आपने कहा कि 2030 में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, उसके लिए हमें एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है। और आज आपने एक फिगर बताई, जैसे आपने बताया रिपोर्ट का आपने हवाला दिया, उसमें एक चीज वोकल फॉर लोकल का प्रभाव जो आता है उसमें उस रिपोर्ट में यह भी कहा 87% लोगों ने जो बाजार में व्यापारी वगैरह उन्होंने कहा कि हमने देखा लोगों में प्रेफरेंस फॉर इंडियन प्रोडक्ट था, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा उन्होंने एक चीज और कही उस रिपोर्ट में कि 72% व्यापारियों ने ये कहा इस बार सेल्स इतनी बढ़ी है क्योंकि जीएसटी कम हुआ है, जीएसटी 2 रिफॉर्म्स जो हुआ है उसकी प्राइस रिडक्शन हुआ है उसके कारण जो सेल्स बढ़ी है। तो देखिये प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का स्वदेशी का उसका एक बड़ा महत्व तो है, लेकिन उन्होंने एक और काम किया है कि आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है उसने कहा है कि बैंकों का क्रेडिट बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और उसमें इस बार यानी 20 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर का 15 दिन का जो कालखंड था 15 दिन का उसमें बैंकों से 3.63 लाख करोड़ का क्रेडिट ऑफ टेक हुआ है, जो उससे इमीडिएट उससे पहला जो क्वार्टर था उसमें वो लगभग 1 लाख करोड़ का था, तो 3.63 लाख करोड़ का क्रेडिट ऑफ टेक बढ़ा है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और उस रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा है कि 3 महत्वपूर्ण कारण है, एक जो इस बार बजट आया था उसमें मोदी सरकार ने जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें बहुत तेजी से मिडिल क्लास को काफी बेनिफिट दिया था, 12 लाख तक की एनुअल इनकम पे टैक्स 0 टैक्स था, एक वो महत्वपूर्ण उसमें योगदान था। दूसरा जीएसटी 2 रिफॉर्म्स के अंतर्गत लगभग सारे प्रोडक्ट्स का जो 28% के टैक्स के स्लैब्स के अंदर आ रहे थे उसमें से 90% आइटम्स को वो 18% के स्लैब में ले आए, और जो ये 12% के टैक्स स्लैब में जो आम जनता के लिए जो टैक्स स्लैब में प्रोडक्ट आते थे उनमें से 96% आइटम्स को 5% और 0% के टैक्स स्लैब में लाए। तो जीएसटी 2 रिफॉर्म्स के अंतर्गत सरकार ने टैक्स बहुत कम किया, और वित्त मंत्री जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा कि हम 54 आइटम्स को इंडिविजुअली मॉनिटर कर रहे हैं कि वो जो टैक्स बेनिफिट सरकार ने दिया है वो कंज्यूमर को पास ऑन हो रहा है कि नहीं। और आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेपो रेट में इंटरेस्ट रेट भी 100 बेसिक पॉइंट कम किया है। तो 3 महत्वपूर्ण कदम थे, सरकार ने इनकम टैक्स मिडिल क्लास के लिए बहुत उसमें रियायत दी, जीएसटी 2 रिफॉर्म्स के अंदर आम रोजमर्रा की चीजें ज्यादातर चीजों के रेट्स को ड्रास्टिकली कम किया गया, और तीसरा आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जिसके कारण क्रेडिट अवेलेबिलिटी ये हुई है। और इसका ही कारण है कि ओवरऑल ये जो आपने जो कहा है कि 5.4 ट्रिलियन का जो सेल्स बढ़ा है वो 25% पिछले साल के इसी पीरियड के दिवाली के पीरियड से बढ़ के ये जो सेल्स हुई है, और केवल उन्हीं प्रोडक्ट में नहीं, कार का देखिए, आपको कार का एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, मारुति ने इस साल दिवाली के ये इस महीने में 3,25,000 गाड़ियों को सेल किया है और टाटा मोटर ने 1,00,000 गाड़ियों को सेल किया इसी नवरात्रि के इस पीरियड में, जो कि लगभग 33% पिछले साल से बढ़ी। तो कार सेल्स बढ़ी है, हुंडई की भी 30% कार सेल्स बढ़ी है, कार सेल्स बढ़ी है, आम रोजमर्रा की चीजों की सेल्स ओवरऑल मार्केट में बहुत बढ़ी। और मैं तो अभी चांदनी चौक और सदर की बातें आपको बताना चाहता हूं कि वहां के मार्केट के फोटोग्राफ्स आए हैं, लोग जो जाके बताते हैं, मुझे तो लग रहा है जैसे कुंभ के मेले में इतनी भीड़ होगी वैसी भीड़ वहां लगी हुई थी। तो सेंटिमेंट का भी एक पॉजिटिव बात है, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो वोकल फॉर लोकल का है, देखिए देशभक्ति का जज्बा हमारे देश में बहुत है लोगों में, लोग अपनी जान दे देते थे स्वतंत्रता के संग्राम में, कितने लोगों ने जान दे दी थी, तो ये क्या बात है कि हम भारत की बनी हुई चीजें ना खरीदें। तो ये बात है, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए भी काम कर रही, तो सरकार 360 डिग्रीज इंप्रूवमेंट कर रही है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कर रही है, कंजम्पशन डिमांड के लिए लिक्विडिटी भी क्रिएट कर रही है, प्राइजेस भी कम कर रही है, आम जनता के पास लो टैक्स करके उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैश भी बढ़ा रही है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को भी प्रोत्साहित कर रही है आईपीआर क्वालिटी बढ़ाने के लिए। और इसका आप अल्टीमेटली आप देखिएगा, जब सरकार ने जो जर्मनी के साथ, यूके के साथ, यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमने बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, जो उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और हम आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका के साथ भी जल्दी से एग्रीमेंट करेंगे।
जी, आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर वोकल फॉर लोकल के बारे में लोगों को प्रेरित किया है और उन्हें कहा है कि आप आसपास जो आपके लोग उत्पाद बनाते हैं उन्हें ही जरूर खरीदिए। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद हमने देखा था कि किस तरीके से खादी की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
भारत को सशक्त बनाने के लिए हमें चक्रधारी मोहन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चरखाधारी मोहन के रास्ते पर चलना है, हमें वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है। ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है, जब भी हमने संकल्प लिया है तब तब हमने करके दिखाया है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं खादी का। खादी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी थी, कोई पूछने वाला नहीं था, देश ने संकल्प लिया और इसका नतीजा भी दिखा। 1 दशक में खादी की बिक्री करीब करीब 7 गुना बढ़ गई। देश के लोगों ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ खादी को अपनाया है।
डॉक्टर रजनीकांत, अगर चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि गोपाल जी कह रहे थे कि क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है, एक बड़ा सवाल यहां पर ये बनता है कि जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो इसका अल्टीमेट लक्ष्य जो है वो वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल है। वहां पर जो वैश्विक मापदंड हैं उस गुणवत्ता को मीट करने के लिए आपको क्या बदलाव दिखाई देते हैं कि क्या चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हमारे प्रोडक्ट्स उस क्वालिटी को मीट कर पाएंगे?
हम आपको बताएं कि जो सरकार की जो बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक शिल्पी एक अच्छा खिलौना बनाएगा, एक कुम्हार एक बढ़िया मूर्ति गढ़ेगा, एक वुड कार्विंग वाला एक कर्नाटका से एक अच्छी स्टैचू तैयार करेगा, लद्दाख में बैठने वाला एक लकड़ी की पॉटरी तैयार करेगा, और जम्मू कश्मीर में बैठने वाला वो रजौरी से शायद चिकरी के वुड क्राफ्ट की बात करेगा, बसोली का पश्मीना या उसकी पेंटिंग तैयार करेगा, या अंडमान निकोबार में वो पराग के वुड की कार्विंग की बात करेगा या मैट के वीविंग की बात करेगा निकोबार से। ये सारी चीजें लोकल हैं, जो हजारों साल से भारत में लोकल रही है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको बाहर दुनिया के दूसरे देशों में कौन से उत्पादों की डिमांड है उसकी प्रॉपर स्टडी करा करके, नीचे मास्टर आर्टिजन है, वीवर है, फार्मर है, हम तो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो रामबन के सुलई हनी की बात कर रहे हैं, हम तो सुंदरबन के हनी की बात कर रहे हैं, या हम बागेश्वर चंपावत के हनी की बात कर रहे हैं उत्तराखंड देवभूमि से, उसको निकालने का काम तो किसान कर रहा है, शिल्पी कर रहा है, बुनकर कर रहा है, बनाने का काम कर रहा है, उसकी फिनिशिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग, फिर उसकी ग्लोबल लेवल पे मार्केटिंग। इस बात को जितने भी विभाग है सरकार के संबंधित, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसान तो मड़ुआ को, किसान झिमोरा को, कहत को, कुलत को पैदा करने का काम करेगा, लेकिन पुरोला का लाल चावल उत्तरकाशी की पुरोला घाटी से निकला हुआ चावल पैक होकर के रेड राइस की लेबलिंग के रूप में कैसे दुनिया के बाजार में पहुंचेगा और वो 600 से 1000 रुपए केजी कैसे बिकेगा। इस पैकेजिंग का काम तो सरकार का जो पैकेजिंग का डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, नेशनल पैकेजिंग इंस्टीट्यूट बैठा हुआ है, ये जिम्मेदारी है। बनारस में हाथी के अंदर हाथी सॉफ्ट स्टोन जाली क्राफ्ट बनाने वाला या बनारस की गुलाबी मीनाकारी बनाने वाला बहुत ही शानदार प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, लेकिन वो पैकेजिंग नहीं कर पाएगा, वो लेबलिंग नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें उस संबंधित डिपार्टमेंट्स के साथ स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाने चाहिए। दूसरा, 100 वर्ष से वो हाथी के अंदर हाथी बना रहा है और डिमांड है दुबई के अंदर में ऊंट की डिमांड है। उस आर्टिजन को सरकार के विभागों से, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, एमएसएमई है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उसका प्रमोशन करने का काम है। ये प्रोडक्ट के डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट की डिमांड के अनुसार में नए उत्पादों को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग प्रशिक्षण कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्कीम को लिंक किया गया है। वैसे ही आने वाले समय में हमको सभी स्वदेशी उत्पादों को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड की पैकेजिंग की आवश्यकता है, क्वालिटी प्रोडक्शन को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को विशेष योजनाएं इसके लिए बना करके और अलग अलग माध्यमों से,
समूह
का माध्यम से, एफपीओ के माध्यम से, प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से लागू करना पड़ेगा।
जी बिल्कुल। गोपाल जी, जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो क्या आप मानते हैं कि वोकल फॉर लोकल जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान का सबसे अहम स्तंभ है?
बिल्कुल, आत्मनिर्भरता हुए बगैर, यानी प्रोडक्शन जो सप्लाई चेन है, प्रोडक्शन का जो पूरा इकोसिस्टम है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीनों की आवश्यकता है। तो ये अगर नहीं अवेलेबल होंगे तो हम प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, तो फिर वोकल फॉर लोकल का कोई सेंस नहीं रह जाता, स्वदेशी नारा रह जाता है, वोकल फॉर लोकल नारा ले जाता है। तो सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी ने ये जो आत्मनिर्भरता की बात की है, डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, जो रॉ मटेरियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया है, पावर सप्लाई को इम्प्रूव किया है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये इकोसिस्टम अगर आनंद जी नहीं बनाते पिछले 11 साल में, तो आज हम लो वोकल फॉर लोकल बोलते तो केवल लो एंड प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट और उसी में ही रह जाते। जो विजन है सरकार का वह है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, खासकर एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देके ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करने का, और उसमें हैंडीक्राफ्ट एक बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो सब डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बड़ा रोल तो है ही, वो क्वालिटी उनकी इम्प्रूव करना है, ये सब है। लेकिन जो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अब देखिए जीएसटी जब लेके आए तो वन नेशन वन मार्केट की बात की, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी कम हुई। अगर दक्षिण भारत से कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग चलता है और नॉर्थ में वो बिकता है, तो पहले वो ऑक्ट्रॉय और अलग अलग चीजों के रास्ते से उसको जितना टाइम लगता था उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 20% पे वो ट्रांसपोर्टेशन टाइमिंग उसका बच गया, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी बच गई, तो उसकी कॉस्ट कम हुई, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कम हुए। तो हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं ना आनंद जी, प्रधानमंत्री जी उनका विजन है भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की बात है, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करके उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो हमारा इतना बड़ा 140 करोड़ लोगों का जो मार्केट है, वो कंजम्पशन को, उसको डिमांड को उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अलाइन करने की बात है। तो आत्मनिर्भरता, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी, ये तीनों को हमें एक साथ लिंक करके देखना चाहिए, और उसके साथ जो गोल है कि भारत को वैश्विक स्तर पर विकसित भारत, इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की बात है। और जैसे क्वालिटी की आपने बात की, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी है कि आप आईपीआर रजिस्टर करिए ग्लोबल लेवल पे, जीआई टैगिंग के लिए सब्सिडाइज किया। एक समय अभी रजनीकांत जी बता रहे थे पिछले 60 साल में 60-65 आइटम्स ही जीआई टैगिंग के हुए थे, अब लगभग 650 आइटम्स पिछले 2-3 साल में जीआई टैग के अनुसार अब रजिस्टर हो गए और अब टारगेट क्या है कि आने वाले 2 साल में 10,000 आइटम्स हम जीआई टैगिंग के हिसाब से भारत की जो ज्योग्राफिकल विरासत है उसको ग्लोबल मार्केट में पहुंचाएंगे। तो यह सारी चीजें हैं जिसके अंतर्गत क्रेडिट अवेलेबिलिटी, आरबीआई का जो बात कर रहे थे रजनीकांत जी, मैं कहता आरबीआई ने 22 स्टेप्स बैंकों को कहे कि आप क्रेडिट केवल रेट कम नहीं करना, ईज ऑफ क्रेडिट देने की भी बात की है। 22 स्टेप्स उन्होंने घोषित किए हैं जिसके कारण बैंक कोलेटरल फ्री लोन दे सकें, जल्द 72 घंटे में लोन दे सकें, इन सब चीजों के ऊपर भी सरकार काफी काम कर रही है।
देश ने मेड इन इंडिया फोन पर भी भरोसा जताया। 11 साल पहले हम अपनी जरूरत के ज्यादातर फोन इंपोर्ट करते थे, आज ज्यादातर भारतीय मेड इन इंडिया फोन ही इस्तेमाल करते हैं। आज हम हर साल 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बना रहे हैं, 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। साथियों, हमारा मेड इन इंडिया, हमारा यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा। भारत में बने रेल कोच हो या फिर लोकोमोटिव, इनकी डिमांड अब दुनिया के दूसरे देशों में भी बढ़ रही है।
डॉक्टर रजनीकांत, कार्यक्रम में समय नहीं है, बहुत संक्षेप में आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगले 5 वर्षों में भारत में वोकल फॉर लोकल को कहां देखते हैं आप, जिससे कि ये देश वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन सकता है।
माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिशा में जिस तेजी के साथ काम कर रहे हैं, हम सभी लोग पूरे भारत में उनके साथ हैं और वापस आने वाले समय में भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
गोपाल जी, आपका, डॉक्टर रजनीकांत आपका इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
नमस्कार, सभी को, श्रोताओं को बहुत बहुत आभार।
जब आप किसी बड़ी ब्रांड की चीज उठाते हैं तो कहीं कोई छोटा दुकानदार अपनी उम्मीदें समेट लेता है, पर जब आप अपने शहर, अपने गांव, अपने ही लोगों से बना सामान अपनाते हैं तो सिर्फ एक चीज नहीं खरीदते, आप किसी की मेहनत को पहचान देते हैं। जब आप हस्त निर्मित वस्त्र पहनते हैं, मिट्टी के बर्तन में चाय पीते हैं या किसी लोकल किसान से फल खरीदते हैं तो आप केवल देशभक्ति नहीं दिखा रहे, आप भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, क्योंकि असली भारत इन्हीं छोटे छोटे हाथों में बसता है जो मेहनत से सपनों को आकार देता है। तो वोकल फॉर लोकल का समर्थन करिए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप भी अपना बहुमूल्य योगदान दीजिए। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे वोकल फॉर लोकल अर्थव्यवस्था की मजबूती में स्थानीय उत्पादों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत द्विवेदी और आर्थिक विश्लेषक गोपाल कृष्ण अग्रवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
चर्चा का विषय है।